نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پانچویں پارے کا آغاز ہم چوتھے پارے کی آخری آیت حرمت علیکم امہاتکم سے کریں گے. سورۃ نساء کی آیت نمبر 23 ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم. حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو ہاں جب تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے. اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا. اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہوئے ہو اپنا نکاح کر لے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے. تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو وہ پاک دامن ہوں نہ کہ اعلانیاں بدکاری کرنے والیاں نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں. بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے. اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے. یہ تھی آیت نمبر 23 سے 25 23-25. اس کا عنوان ہے رشتوں کا تقدس پامال نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری خواہشات رکھی ہیں جس کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے. انہی خواہشات میں سے ایک خواہش سیکس کی خواہش ہے, شہوانی خواہش ہے جو عورت اور مرد کے درمیان پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جذبات کی حد بندی کی ہے. اسی طرح جیسے کھانے اور پینے کے کچھ ضابطے مقرر کیے, کچھ چیزیں حلال اور کچھ حرام کر دیں, اسی طرح شہوانی جذبات کے لیے بھی کچھ حدود اور ضابطے ہیں. اسلام چاہتا ہے کہ انسان ایک با مقصد زندگی گزارے. اگر گھر کے اندر رہنے والی خواتین سے نکاح جائز ہوتا تو گھر میں ہر وقت ایک ایسا شہوانی ماحول ہوتا کہ مرد کام نہ کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس بیکاری سے بچانے کے لیے گھر میں ہر وقت عام رہنے والی جو عام طور پہ گھر میں قریب رہنے والی خواتین ہیں ان کو محرمات کہہ دیا. محرمہ اس عورت کو کہتے ہیں جس سے کسی مرد کا نکاح جائز نہیں ہوتا. کیونکہ اگر آپ ذرا تصور میں تو لائیے, میں تو ابھی بات کرنے لگی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اگر محرمات سے نکاح جائز ہوتا تو بڑی ہی تکلیف کے ساتھ کہوں گی کہ آپ اس وقت جہاں قرآن سننے آئی ہوئی ہیں کیا آپ پورے اطمینان سے قرآن سن سکتی؟ آپ میں سے کتنی خواتین ہیں جو گھر میں بیٹوں اور بیٹیوں کو چھوڑ کے آئیں؟ کتنوں کے شوہر اس وقت رات کی جاب کے بعد تھکے ہوئے گھر آئے ہوئے آرام کر رہے ہوں گے اور گھروں میں آپ کی جوان بچیاں بھی ہوں گی. ایک لمحے کے لیے سوچئے کیا نظام نہ بگڑ جاتا دنیا کا اگر باپ اور بیٹی کا نکاح جائز ہوتا, اگر بھائی اور بہن کا تعلق جائز ہوتا اور ان کے دلوں میں آنے والے جذبات جائز ہوتے تو کیا دنیا کا نظام چلتا؟ کیا مرد اطمینان سے گھروں سے جاب پہ جاتے جبکہ گھروں میں جوان مرد جو ہیں وہ موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت حدیں رکھی ہیں اس کے باوجود دیکھیے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری تسکین کے لیے جو عورت میں نے رکھ دی بس اسی سے اپنی نگاہوں کو پاک رکھو, اسی سے اپنی زبان کو پاک کرو. صرف یاد رکھیے کہ شہوانی تعلق شرم گاہ کا تعلق نہیں ہوتا, یہ تو ایک آخری حد ہے. اسلام چاہتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے تو انسان کی زبان اگر کوئی اچھی بات بولے تو اسی جگہ بولے. اگر کسی سے محبت کے بول بولنے ہیں تو اسی جگہ بولو. کسی سے محبت بھری بات سننی ہے تو تمہارے کان صرف اسی کی بات سنیں. کسی سے چیٹنگ کرنی ہے, تمہارے ہاتھ اگر لکھتے ہیں تو وہ صرف شوہر بیوی یا بیوی شوہر کے لیے لکھے, اس کے علاوہ کہیں اس کی اجازت نہیں. लेकिन जब लोगों के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होता, जब लोग नफ्स के गुलाम होने लगते हैं, तो बाज़ दफ़ा घरों में हलाल रिश्ते होने के बावजूद हराम जगहों पे अपनी हवस को पूरा करते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हीं बातों के अंदर एक लंबी फहरिस्त देने के बाद फिर वो शर्तें भी हमें बता दी कि अगर तुम किसी से निकाह करना चाहो तो उसकी शराइत क्या है। अगर आप आयत नंबर 24 से 25, सिर्फ 2 आयतें बल्कि 24 आयत का भी कुछ हिस्सा, सिर्फ 1.5 आयत में अल्लाह ताला ने निकाह के पूरे अरकान बयान कर दिए कि निकाह के जो बुनियादी रुकन है उसका तस्करा कर दिया। सिर्फ आपके फायदे की खातिर सिर्फ वो लफ्ज बोल देती हूँ कि जिनके बगैर निकाह नहीं होता। पहली चीज इजाबो कबूल, यानी जुबान से कबूल करना पड़ता है। दूसरी बात गवाहों का होना, तन्हाई में किया हुआ निकाह निकाह नहीं होता। ये निकाह कोई निकाह नहीं कि लड़का लड़की घर से भाग गए और किसी मस्जिद में जाके उसके मिंबर के सामने खड़े होके कसम खा लें कि आज तुम मेरी और मैं तुम्हारी हूँ। एक ऐसा मैंने वाकया सुना कि लड़का लड़की आपस में इन्वॉल्व थे और किसी तरह न जाने कैसे हरम में पहुंच गए और कहते हमने काबा के सामने हाथ पकड़ के एक दूसरे को कहा कि हम तुम्हारे शौहर और बीवी हैं। ये बातें कब होती हैं? जब हमारी आम जिंदगी में अल्लाह का दीन नहीं होता। तो बात यह है कि निकाह के लिए गवाहों की मौजूदगी लाजमी है। तीसरी चीज वली, बाप की मौजूदगी। बाप नहीं है तो भाई, भाई नहीं है तो फिर चचा, चचा नहीं है यानी करीब के वली के होते हुए दूर का वली नहीं चलेगा। वासे सही बुखारी की रिवायत है कि ला निकाह इल्ला बी वली, वली के बगैर निकाह होता ही नहीं, वो जिना है, उसको सिफाख कहेंगे। उस निकाह के नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा वलदु जिना कहलाएगा। आज इंसानियत को क्या तोहफे दिए? लड़कियों ने सोचा कि हम आजाद हैं, उन्होंने सोचा कि माँ बाप तो एक कैद है। वो ये बात भूल गई कि वो बच्ची जो बाप के हाथों से दुआएं लेती हुई और माँ के सीने से जुदा होके जब किसी के हाथ में जाती है तो उनको भी पता होता है किसका पीछा करने वाला कोई है। ये कीमती चीज है जो मैं लेके जा रहा हूँ, उसको पता होता है मैं चुरा के नहीं लेके जा रहा, मुझे इज्जत से दिया जा रहा है। लेकिन वो बच्चियां जो रातों के अंधेरों में घरों की दीवारें फलांग के बाप के जेवरात को चुरा के एक अजनबी के पास जाती है, असल में वो उसको ये बता रही होती है कि वो बाप जिसने मुझे 18 से 20 साल तक पाला, जब मैं उसकी मुखलिस नहीं रही तो कल मैं तुम्हारा घर भी छोड़ दूंगी। जब मेरे मिजाज में ही ये जुल्म है, आज अच्छी बेटी नहीं बनी तो कल अच्छी बीवी कहाँ बनूंगी। फिर कल जब इन बच्चियों की आंखों में आंसू होते हैं तो कोई उनको पोछने वाला नहीं होता। इस्लाम ने वली की शर्त लगा के कोई कैद नहीं किया, इस्लाम ने औरत को प्रोटेक्ट किया। इसी तरह फिर अगली शर्त क्या होती है? घर बसाने का इरादा हो, वक्ती लज्जत नहीं। शादी सिर्फ एक सेक्स का नाम नहीं, शादी एक बामकसद ताल्लुक है। जब तक इसके अंदर घर बसाने का इरादा नहीं होता उस वक्त तक इस शादी की हिकमत ही समझ नहीं आती। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने वो सारी शराइत दी। सारी शराइत पूरी कर सकते हो तो आजाद औरत से शादी करो, ये नहीं कर सकते या तुम्हें कोई नहीं देता तो फिर किसी की लौंडी से निकाह करो। लौंडी इस्लाम से पहले का एक दौर था। इंशाल्लाह हम सूरत मोमिनून में जब इस मौजू पे आएंगे तो वहाँ थोड़ी सी इस पे बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ जहन में ये रख लीजिएगा कि जो बात यहाँ बयान की गई, मैं चाहूंगी कि आप हाईलाइट करें अपने कुरान पाक में, वला मुत्तखिजाती अखदान, आयत 25 का ये हिस्सा है, और न छुपी दोस्तियां पकड़ने वालियां। यहाँ लौंडी के ताल्लुक की बात है और कहा गया कि एक लौंडी के साथ भी खुफिया ताल्लुक कायम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस दौर में जब कुरान पाक नाजिल हो रहा था तो आजाद औरतों के किसी मर्द के साथ खुफिया ताल्लुक की तो बात ही नहीं थी। लेकिन क्या कहा जाए आज के इस बड़े लिखे दौर को कि जहाँ बॉय एंड गर्ल फ्रेंडशिप को लीगलाइज कर लिया गया। यहाँ माँ बाप ने भी अब इसको रियलाइज कर ही लिया कि ये बच्ची बड़ी हुई है, जरूर इसका कोई बॉयफ्रेंड बनेगा। और जहाँ माँ ने भी बेटे को कहा बनाओ दोस्ती किसी से भी लेकिन मुसलमान से करना, हाँ कर लो दोस्ती लेकिन हमें जरूर बता देना कौन है। और आज के इस गए गुजरे दौर में माँ बाप इस पे खुशी महसूस करते हैं कि बच्चे हमें बता के फिर दोस्तियां करते हैं। कहानी वाला मुत्तखिजात अखदान, एक लौंडी जब छुपी दोस्ती नहीं कर सकती तो फिर दूसरा इंसान कैसे कर सकता है जो एक आजाद इंसान है। किसी के साथ शादी से पहले इन्वॉल्व होना अपने आने वाले शोहर के साथ खयानत करना है। ऐसी लड़कियां अगर उन्हीं लड़कों के साथ अगर शादी कर भी पाती हैं तो वो लड़के कभी उनकी वो इज्जत नहीं करते जो एक अरेंज मैरिज की सूरत में है। ठीक है अरेंज मैरिज में भी मोहब्बत हो सकती है, लेकिन जहाँ हद इतनी बढ़ जाए कि छुपे हुए ताल्लुक हो और जब माँ बाप रोकें तो पुलिस को बुला के कहा जाए कि इनको कहो ये कौन होते हैं जो हमें टोकने वाले, तो बात यही है कि अल्लाह ताला इंसान का दुश्मन नहीं, उसने जो कानून बनाए वो हमारी खैर और हिकमत के बनाए। इसी के बारे में अगली बहुत ही खूबसूरत 3 आयात हैं। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम। अल्लाह सुबहाना ताला चाहता है कि तुम्हारे वास्ते खूब खोलकर बयान करे और तुम्हें तुमसे पहले के नेक लोगों की राह पर चलाए और तुम्हारी तौबा कबूल करे, और अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। इसके बरक्स वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे। और जो लोग ख्वाहिशों के पैरोकार हैं वो चाहते हैं कि तुम इससे बहुत दूर हट जाओ। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफानकुम व खुलिकल इंसानु दईफा, और अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे तखफीफ करे यानी कमी करे, तुम पर बोझ कम करे, क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया। ये थी आयत नंबर 26 से 28, 26 to 28। इसका उन्वान है जिंदगी गुजारने के फितरी तरीके शुरू से लेकर आखिर तक। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अंबिया कराम को भेजा। हर दौर में कुछ बुनियादी चीजें थी, वो कभी नहीं बदली। उसी में से जिंदगी गुजारने का लाइफ स्टाइल और उसी में शादी ब्याह मंगनी दावत, ये तमाम ताल्लुकात जो अल्लाह ताला ने इंसानों के कायम किए उसका तस्करा भी मिलता है। कुरान पाक जब हम खोलते हैं तो हमारे सामने एक नया ही लाइफ स्टाइल आता है। हम इससे पहले जो जिंदगी गुजार रहे होते हैं ऐसे लगता है कि वो तो जहालत की थी। आप में से कितने लोगों को सिर्फ ये 5 सपारे पढ़ने के बाद ये एहसास होने लगा, खास तौर पे वो लोग जो पहली दफा कुरान पाक पढ़ते हैं। यकीनन बहुत सारे होंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी वो है जो हमारे माशरे की जिंदगी है, हमारा दीन वो होता है जो हमारे रस्म व रिवाज का दीन है। लेकिन अल्लाह सुबहान तआला ने हर नबी के जरिए से एक ही पैगाम पहुंचाया। हुआ क्या कि उनकी कौमों ने उस पैगाम को महफूज नहीं किया। यहूद और नसारा ने उन बातों में इतनी तब्दीलियां कर दी कि वो बिल्कुल असल दीन ही खत्म हो गया। हत्ता कि एक दौर ऐसा भी आया कि दुनिया में तौरात नाम का कोई नुस्खा मौजूद नहीं था। अल्लाह ताला ने अपने उस इल्हामी पैगाम को महफूज करने के लिए आखिरी पैगाम अरबी जुबान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान से नाजिल करवाया, जो कियामत तक के लिए जारी रहेगा। आज जो लोग कुरान पाक के अहकामात को सुन के उस पर अमल करते हैं, दरअसल वो अम्बिया कराम के उस काफिले में शामिल हो जाते हैं जिसका सिलसिला हजरत नूह अलैहि सलाम से शुरू हुआ था। तो आप कह लीजिए कि आज जो दीन इस्लाम पे अमल करता है, जो शरीयत मोहम्मदिया पे अमल करता है, वो सारे अंबिया इकराम की शरीयतों पे अमल करने लगता है। लेकिन होता क्या है कि जब अल्लाह का लाया हुआ दीन सामने आता है, तो वो दीन जो लोगों ने सदियों के रिवाज और रस्मों के जरिए पैदा किया होता है, लोगों के जहनों पर बहुत गहरा इसका असर होता है। लोग उस दीन को अपना दीन समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि जो तरीके बाप दादा के थे वही ठीक थे। वो समझते हैं कि जो हमारा मुआशरे का रिवाज है, जो ट्रेंड्स हैं और जो हमारे इर्द गिर्द चीजें वही ठीक हैं। नतीजा क्या होता है कि जब कोई बंदा अल्लाह के दीन की दावत देता है तो लोग उसके दुश्मन होने लगते हैं। वो सोचते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट है, वो कहते हैं ये फंडामेंटलिस्टिक है, वो कहते हैं ये 14वीं सदी में किस बात की बात करता है। और इस तरह फिर हर दौर में दो दीन पैरेलल चलते हैं, एक है अल्लाह का दीन और दूसरा है ख्वाहिश का दीन। इस जुमले को जरूर लिखिएगा। एक तरफ अल्लाह का दीन है, ये क्या है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इसके बरक्स आप दुनिया के इस वक्त के सारे अध्यान का नाम लिख लें, ज्यूइज्म से लेके क्रिश्चियनिटी से लेके बुद्धाइज्म से लेके लंबी लिस्ट बनाते जाए, उन सब के इज इक्वल टू कर दीजिए ख्वाहिश का दीन। हर बंदे ने अपनी ख्वाहिश को दीन बनाया, किसी ने उसको कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कहा। आज भी वो लोग जो अल्लाह के दीन पे आना चाहेंगे उनको अपनी ख्वाहिशों के ऊपर पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। नुकसान क्या होता है, अल्लाह का दीन बहुत बैलेंस है, फितरत के करीब है, उसने पैदा किया, वो जानते हैं मुझे क्या चाहिए, दूसरा कैसे जानेगा। जब दूसरों ने उसको किया तो नतीजा क्या हुआ, कहीं इफरात और कहीं तफरीत। मिसाल दूंगी कि जैसे औरत के साथ मर्द का ताल्लुक, इस्लाम ने ये ताल्लुक कैसा रखा कि पीरियड्स में औरत के साथ एक मखसूस ताल्लुक के सिवा हर ताल्लुक जायज है, क्योंकि औरत के जज्बात है, वो कोई अछूत तो नहीं। यहूद ने इसके अंदर क्या इजाफा किया, इतनी शिद्दत बढ़ती, कहा पीरियड्स में औरतों को अलग कर दो, घरों से अलग कर दो, और उनको एक ऐसे हाउसेज में बंद कर दिया जाता था कि जहां पे उनको किसी का हाथ न लगे, बाज़ ख़वातीन की शक्ल नहीं देखी जा सकती थी। और अफसोस ये कि आज भी जाहिलियत की ये रस्म मौजूद है। कैलाश नाम की वादी है काफ्रिस्तान, वहां आप देखिए तो एक ऐसे हाउसेज बने हुए हैं जिसके बाहर खोपड़ी का जो निशान होता है डेंजर का, वो बना हुआ है, और उसमें पीरियड्स वाली सारी ख़वातीन को बंद कर देते हैं। और उनको खाना कौन देता है, घर का कोई मर्द कोई बच्चा, और वो यूं फेंक के आता है कि कहीं उस औरत की शक्ल ना दिखे। आज भी ये जहालत मौजूद है। नसारा दूसरी हद पे चले गए, उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, सब करो, उन्होंने उसके साथ सोहबत भी कर ली। अल्लाह को पता है कि औरत के लिए क्या चीज तकलीफ दे और क्या नहीं। अल्लाह ने क्या फरमा दिया कि यस सलूना का निल महीद कुल हुआ अजा फातजिलुन निसा फिल महीद। कौन सा असूल अच्छा है, अल्लाह का अच्छा है कि इंसानों का अच्छा है। इंसान हमेशा इफरात तफरीत करते हैं। मैं छोटी सी मिसाल दूंगी कि माँ जो अपने बच्चे के लिए कानून बना सकती है ना, दुनिया की कोई ताकत वो कानून नहीं बना सकती। माँ को अपने बच्चे की कैपेसिटी पता होती है, ये कमजोर है बेचारा, ये इतना नहीं कर सकता, ये इतना खाता ही नहीं है, ये इतना काम कैसे करेगा। इसके बरक्स माँ की बजाय किसी और को कहा जाए ना काम बांट दो, तो बाज दफा वो जुल्म होगा। अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं, वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। उसने जो दीन दिया वो बैलेंस दीन था, उसका दीन जो था वो आज भी उसी तरह काबिले अमल है जैसा 1400 साल पहले था। आज हमने दुनिया में लोगों को अपना मुहसिन और मावा समझा, हमने सोचा की औरत जब तक मर्द के शाना बशाना काम नहीं करेगी शायद औरत का हक ही नहीं दिया जाएगा। हालांकि वो औरत जो बेचारी ये घर के लिए थी, आपने उसको मर्द बना के हर जगह खड़ा कर दिया, औरत फिर भी रही, बच्चा फिर भी उसने पाला, हैज और निफास की तकलीफ उसी ने सही। उसका जिस्म कमजोर था, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, उसके अंदर भूल और निस्यान थी, उसको मीनोपॉज था। ये सारे जुल्म तो उस औरत पे हुए कि उसको एक औरत के साथ साथ एक मर्द बना दिया। इस्लाम हमेशा वो कानून देता है कि जो हमेशा चलते रहें। तो हमें अपने कुरान पाक के इस सफर में एक नियत करनी है कि हमने लोगों को देख के कानून वजा नहीं करने, हमने लोगों के कद ऊंचे देख के अपने पंजों पे नहीं खड़े होना, उछल उछल के कद बड़ा नहीं करना। अल्लाह ने जब कह दिया कि युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ानकुम, अल्लाह ने आसानियां कर दी, तो फिर अल्लाह को पता है खुलिकल इंसानु दईफा। इस आयत को पढ़ के तो मुझे वाकई वही लगता है कि माँ अपने कमजोर से बच्चे को सीने से लगाती है। मुझे पता है मेरा बच्चा कितना कमजोर है। अल्लाह कहता है लोगों मैंने तुम पे जुल्म तो नहीं किया, तुम क्यों ये मसले करते रहते हो कि इस्लाम बड़ा मुश्किल है, इस्लाम ऐसा, इस्लाम को मत बदनाम करो। तुम अहकामात को उनकी जगह पे लोगे, अल्लाह ताला खुद ही तुम्हारी जिंदगियों में अमन और चैन अता फरमाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, ए ईमान वालो आपस के माल नाजायज तरीके से मत खाओ मगर ये कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से हो, खरीदो फरोख्त और अपने आप को कत्ल ना करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम पर नहायत मेहरबान है। वमन यफअल ज़ालिका उद्वानं व ज़ुल्मा, और जो शख्स ये नाफरमानियां सरकशी और जुल्म से करेगा तो अनकरीब हम इसको इस आग में दाखिल करेंगे और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुन्हौना, अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और इज्जत और बुजुर्गी की जगह में दाखिल करेंगे। और उस चीज की तमन्ना न करो जिसके बायस अल्लाह तआला ने तुम में से बास को बास पर फौकियत दी है, और मर्दों का इसमें हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और औरतों का उसमें हिस्सा है जो औरतों ने कमाया, अल्लाह ताला से उसका फजल मांगो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। वलिकुल्लिन जालना मवाली मिम्मा तरकल वालिदानी वलअक्रबून, माँ बाप या कराबतदार जो छोड़ मरे इसके वारिस हमने हर शख्स के मुकर्रर कर दिए, और जिनसे तुमने अपने हाथों मुआहदा किया इन्हें इनका हिस्सा दो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर हाजिर है। ये थी आयत नंबर 29 से 33, 29 to 33। दो उनवान होंगे, अब इस तरह करेंगे कि जहाँ एक से ज्यादा चीजें, तो इंशाल्लाह मैं आपको दो टॉपिक लिखाया करूंगी, आप खुद ही समझ जाएंगे। इस पूरे पोर्शन में दो टॉपिक हैं। पहला क्या है, ना किसी का माल लो ना किसी की जान लो, और दूसरा टॉपिक है इन आयतों का, कोई गुनाह छोटा नहीं क्योंकि ज़ात बहुत बड़ी है। तीसरा टॉपिक है इसका, हसद ना करो, तुम भी अल्लाह से उसका फजल मांग लो। तीन बातें हैं इस पूरे हिस्से में जिस पे बात हो सकती है। पहली बात माल और जान के बारे में, अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर उनकी जान और दूसरों की जान और माल हराम करार दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया हज्जतुल विदा का, उसमें इसी बात की तलकीन की थी। किसी इंसान का माल दूसरे तक पहुंचने की जो सूरत है वो क्या है कि इंसान मेहनत करे और दूसरा उसको उसकी मजदूरी करे, तिजारत हो, लेन और देन के मामले में हो। इसके अलावा कोई तरीका ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें देने वाला देना नहीं चाहता और लेने वाला ले रहा है, इस तरीके को आप बातिल कहेंगे। एक कुलिया जहन में रख लें कि जब देने वाला देना ना चाहे और लेने वाला जबरदस्ती ले, ये सारे तरीके माले ना हक हैं। अब इस पे आप खुद ही बना लेंगे लिस्टें। चोरी कोई नहीं चाहता उसका माल हो, कोई नहीं चाहता कोई धोखे से उसका ले, रिश्वत देने वाला कभी नहीं चाहता रिश्वत दे, सूद देने वाला कभी नहीं चाहता कि वो सूद दे। अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ यही बात कह दी कि आज अगर दुनिया में किसी ने किसी का माल ना हक तरीके से ले लिया तो कल आखरत में वो उसके पेट के अंदर आग होगी। इसी तरह जान के मामले में भी यही हक है। ये जान हमारी अपनी नहीं, ये कमानत है। जैसा कि इंट्रोडक्टरी सेशन था दूसरे दिन का, उसमें ये बात की थी बदन और रूह का ताल्लुक, इंशाल्लाह कहीं आगे आएगा तो मैं आपके लिए दोहरा दूंगी। तो उससे आप जहन में रखिए कि हमारी रूहें अपनी नहीं है, ये अल्लाह की हैं। ये जान और रूह का जो रिश्ता है ये अल्लाह ने जोड़ा हुआ है। अगर कोई इंसान किसी का माल लेता है तो मुजरिम है, इसी तरह किसी की जान लेता है तो असल में वो अल्लाह के हक में अपना हक वसूल करने वाला बन जाता है। अल्लाह ताला ने इसकी सख्त सजा दुनिया में रखी है। इसी तरह एक दूसरी चीज इस हिस्से में, वो कबीरा गुनाहों की बात है। हर दौर में इस पे बहुत बात की गई कि कबीरा गुनाह क्या है और सगीरा गुनाह क्या है। किसी ने पूछा कि कबीरा गुनाह कौन से है, उन्होंने कहा कि हर गुनाह कबीरा है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह अकबर की नाफरमानी है। और हर वो गुनाह कबीरा जिसको बंदा छोटा समझे, हर वो गुनाह कबीरा जिसे आप रुक सकते हैं और आप नहीं रुकते, हर वो गुनाह कबीरा जिसको करके आप तौबा नहीं करते। कितनी तफसीरें करेंगे इसकी, आप इसकी 10 तारीफें कर लें। हर वो गुनाह बड़ा है जिसको करने के बाद आप कहते हैं ओके सब करते हैं, हर वो गुनाह बड़ा है जिसको आप करके गिल्ट फील नहीं करते, वरना गुनाह हो इंसान को चैन कहाँ पड़ता है। हर वो गुनाह बड़ा है जिसको करके आप आराम की नींद सोते हैं, हर वो गुना बड़ा है जिसको करने के बाद आपको तौबा का ख्याल नहीं आता। हर वो गुना बड़ा है जिसको करने के बाद आपकी आंखों में नदामत के आंसू नहीं आते। हर वो गुना बड़ा है जिसको करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। हर वो गुना बड़ा है जिसको करने के बाद आपके माथे पे तेवरी नहीं आती। हर वो गुना बड़ा है जिसको करने के बाद आप फिर दुनिया में गाफिल होके इंजॉय करने लगते हैं। वरना एक औरत ऐसी थी कि जिससे एक गुना हुआ, आज उसको कबीरा गुनाह कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने उसको कैसे छोटा कर दिया। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है, कबीला गामदिया की थी, कहा अल्लाह के नबी गुनाह हो गया, जिना कर चुकी, आपने इग्नोर किया, अवॉइड किया, आप ऐसी चीजों को हवा नहीं देते थे। उसने फिर कहा अल्लाह के नबी गुनाह हो गया और अब तो देखे बच्चा पेट में है। कहा फिर तुमने गुनाह किया, बच्चे का क्या कसूर है, जाओ जब बच्चा पैदा होगा फिर आना। और वो औरत चंद दिन के बच्चे को लपेट के अल्लाह के नबी के पास लाती है। अल्लाह के नबी हद लगा दें, गुनाह सोने नहीं देता, अगर इस हाल में मर गई तो क्या होगा। कहा तुम मर जाओगे इसको कौन पालेगा, पहले इसको दूध पिलाओ, जब रोटी खाने के काबिल होगा फिर लेके आना। और चंद माह के बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ा के वो औरत दरबारे नबी में आती है कि अल्लाह के नबी देख लें अब तो ये रोटी खा रहा है, बस मुझे हद लगा दे। फिर आपने उस औरत से उस बच्चे को लिया और किसी और ने उसको पालना चाहा और आपने उसको हद लगाई। उस औरत के खून के छींटे एक सहाबी के कपड़ों पर गिर गए, कहने लगे नापाक औरत जाते जाते मुझे नापाक कर गई। आपने फरमाया साथी ये ना कहो, इस औरत ने वो तौबा की है कि जो मदीना के गालिबन 70-80 मुख्तलिफ रिवायात हैं, एक जगह है पूरे शहर वालों के ऊपर बांट दी जाए, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर दे। गुनाह तो ये होता है, नदामत, शर्मिंदगी, हम कैसे गुनाह का बोझ ले लेके फिरते हैं। आज अभी इस बोझ को उतार के फेंकिए और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें, वरना याद रखिए छोटे गुनाह मिल मिल के बड़े बन जाते हैं, बड़े गुनाह बार बार होते हैं तो शिर्क बन जाता है और शिर्क बार बार करेंगे तो कुफर बन जाएगा। कोई पहाड़ एक दिन में नहीं बनता, एक छोटा कंकर दूसरे कंकर पे, तीसरा उस पे जाता है और होते होते फिर बड़े पहाड़ बनने जाते हैं। कभी अपने गुनाहों को मामूली ना समझें, यही इंसान की बर्बादी की बात है कि वो अपने गुनाहों को बिल्कुल अहमियत ना दे। और आखिरी बात इस हिस्से में हमने देखी अल्लाह के फजल की। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों के बीच में फर्क रखा है, हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाया। किसी को शक्ल अच्छी दी तो किसी को अकल अच्छी दी, किसी को दुनिया का माल दिया तो किसी को अल्लाह ताला ने आखिरत के दर्जे दिए। अब जब इंसान एक दूसरे को अपने से थोड़ा बड़ा चढ़ा देखता है तो दिल में हसद आने लगता है और वो ये सोच लेते हैं कि ये इस इंसान का फैसला है, वो ये सोचते हैं कि इसको जो नेमत मिली ये इसका फैसला है, और उससे हसद, बुगज, अदावत और क्या कुछ करने लगता है। ऐसा शख्स असल में अल्लाह के ऊपर एतराज करता है, वो ये सोच लेता है कि अल्लाह को नाउजुबिल्ला नहीं पता था कि मुझे ये देना था और इसको नहीं देना। कभी किसी की कोई नेमत देखे, इंसान होने के नाते ख्वाहिश आ सकती है फौरन के अल्लाह तो उसको दे सकता है तो मुझे भी दे दे। इस पे एक बड़ी खूबसूरत दुआ भी आती है, इमाम इब्ने कय्यम की थी। इब्ने तैमिया एक दुआ मांगा करते थे, अल्लाह सुभान व तआला को कहते थे कि या मुअल्लिम अल इब्राहिम अल्लिमनी, ए इब्राहिम को इल्म देने वाले मुझे भी इल्म दे। या मुफहिम सुलेमान फहमनी, ए सुलेमान को फहम देने वाले मुझे भी दे दे। देखिए कितना आसान हल है, किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ आएगा, किसी के लिए कीना आएगा। इसलिए कभी किसी इंसान की कोई नेमत अच्छी लगे तो बारकिल्ला कहें, बारकल्ला कहें, अगर मर्द है औरत है तो बारकिल्ला कहें, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, खुश हैं उसकी नेमत को देख के, दुआ दें। और यही सहाबा कराम का अमल था। आज हमारा हाल है नेमत तो छोड़ें, किसी के कपड़े देख के दिल में आग लग जाती है, मेहनत तो सारी मैंने की थी इसको कहाँ से मिल गया, मैंने तो इतनी मेहनत की थी कि मेरे जैसा सूट किसी का नहीं होगा, इस शादी में सारों की तवज्जो इस पे चली गई, क्या करना है ऐसे जोड़े को। अल्लाह के नबी क्या सिखाते हैं कि किसी को अच्छा जोड़ा पहना देखो तो कहो इल्बिस जदीदन इश हमीदन व मुत शहीदन, तुम नए कपड़े पहनते रहो और तुम्हारी तारीफ होती रहे और तुम शहादत की मौत मरो। ये दुआ दो, जरा सोचिए जिसने ये दुआ दूसरे को दी क्या दिल में बुगज आएगा, और कहाँ दिल पे हाथ रख के हौका भरना, हसद और बुगज तो आएंगे। तो लिहाजा ये सुन्नतों वाली जिंदगी जब गुजारेंगे ना तो दिलों में मोहब्बत भी आएगी इंशाअल्लाह ताला। अब आगे से अब आप औरतों की बात हो रही है, दिल बड़ा कर लीजिए, गुस्सा ना करिएगा। अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो वो अपने आप को पहले औज़ुबिल्लाह पढ़ के मजबूत कर ले, क्योंकि औरतें इस आयत को पढ़ के बड़ी परेशान होती हैं। अर्रिजालु कव्वामून अला निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, मर्द औरतों पर हाकिम है, मर्द औरतों पर कव्वाम है, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं। पस फरमा बरदार औरतें खावन की अदम मौजूदगी में बहिफाजत इलाही निगहदाश्त रखने वालियां हैं, और जिन औरतों की नाफरमानी और बददमागी का तुम्हें खौफ हो इन्हें नसीहत करो और इन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और इन्हें मार की सजा दो, फिर अगर वो ताबेदारी करें तो इन पर कोई रास्ता तलाश न करो, बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी वाला और बड़ी बड़ाई वाला है। और اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو یعنی لڑائی جھگڑے کا تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 34 سے 35، ان کا عنوان ہے رب کا فیصلہ۔ یہ لکھیے، پھر اس کے بعد دو ایرو ڈالیے، بیچ میں لکھیں رب کا فیصلہ، پھر ایک ایرو ڈالیے قوامیت مرد کے لیے، اور نیچے ایک ڈاؤن ایرو کیجئے اطاعت عورت کے لیے۔ آسان لفظوں میں بتا دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کی بانٹ کی۔ دنیا میں جب بھی کوئی ادارہ بنتا ہے نا تو اس کے لیے ٹیم مقرر کی جاتی ہے، ہر بندے کا ایک مختلف رول ہوتا ہے اور ہر بندہ مختلف کام کرتا ہے، اور ہر ایک کا رول جو ڈیفائن ہوتا ہے وہ اس کی صلاحیتوں کے تحت ہوتا ہے۔ کسی بھی ادارے میں بہت سارے کام کرنے والے ورکرز، ہیلپرز، والنٹیئرز ہو سکتے ہیں، لیکن امیر یا لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ دو لیڈرز کا ہونا کسی کے نظام کو بگاڑ سکتا ہے۔ اور یہ در سمے کائنات سے ملا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، تبھی تو سارا نظام چل رہا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان بگڑ جاتے۔ لہٰذا دنیا کے کسی ادارے کے اندر جب یہی تقسیم ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب خاندان کا نظام پیدا کیا تو اس میں بھی یہی ترتیب رکھی، مرد کو قوام بنا دیا۔ قوام کا لفظ عربی میں مینجمنٹ کرنے والا، حقوق کو پورا کرنے والا، ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا، مال خرچ کرنے والا، ٹیک کیئرر، انگلش میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے مینیجر۔ آپ میں سے جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ مینیجر کی کیا جاب ہے، ایک وقت ہوتا ہے وہ ہاتھ سے کچھ نہیں کرتا، صرف اس کو کام کروانے ہوتے ہیں، اور ایک ایسا بھی لمحہ آ سکتا ہے کہ واش روم صاف کرنے والا کوئی نہیں آیا تو اس کو وہ بھی کرنے پڑیں گے۔ بس یہی کیفیت ہے ایک مرد کی۔ اگر آپ مرد کا یہ رول سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس آیت کو پڑھ کے کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ جس طرح کسی ملک کا ایک صدر، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اسی طرح مرد گھر کا ذمہ دار ہے۔ فطری طور پہ اللہ تعالی نے مرد کو مضبوط بنایا ہے، اس کے اندر حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی جسمانی ساخت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے، جذباتی نہیں ہوتا، غصے میں آ جاتا ہے لیکن پھر بھی اپنی عقل پہ اس کو قابو ہوتا ہے۔ اس کے برعکس عورت نازک مزاج ہوتی ہے، جسمانی طور پہ کمزور ہوتی ہے، ارادے اس کے متزلزل ہوتے رہتے ہیں، بازار جا کے 10 دفعہ کہتی ہے لے لوں چیز کے نہ لے لوں، 4 دفعہ پھر کے آتی ہے پھر بھی کہتی ہے کہ ابھی بھی سوچا نہیں، اور پھر جائے گی تو ملے گی نہیں۔ کمر اتنی پتلی رکھنا چاہتی ہے کہ سارا دن اس کو ہی ناپتی رہتی ہے، دل اتنا چھوٹا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ موٹے موٹے آنسو آ گئے، اور بھول اتنی ہے کہ الماری کھول کے کھڑی ہو کے کہتی ہے پتہ نہیں کیوں کھولی تھی الماری۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ ایسا شخص اگر کسی جگہ کا بڑا بنا دیا جائے تو اس جگہ کا حال کیا ہے؟ اللہ ہی حافظ ہے نا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس جگہ کے معاملات عورت کے ہاتھ میں ہوں گے نا تو وہ جگہ فلاح نہیں پائے گی، اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کو اگر عورت سمجھ جائے تو اللہ کا شکر کرے۔ میں تو کہتی ہوں اللہ کا لاکھ شکر کیجیے اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داریاں نہیں دی۔ مرد سے قوامیت ہے مطلوب، دو وجوہات ہیں، بما فضل اللہ، اللہ نے مضبوط بنایا، جسمانی ساخت ہے، اور دوسری وبما انفقوا من اموالہم، ایک مرد اپنی کمائی کا 90% بلکہ اس سے بھی پلس اپنے گھر والوں پہ لگاتا ہے۔ کوئی اپنے مرد سے جا کے پوچھ لے، اور مرد بےچارے تو گنتے ہی ہوں گے، اگر کسی کی $2000 بھی تنہا ہے نا، آپ دیکھیں ایک مرد کا ذاتی خرچہ $200 سے زیادہ نہیں ہوتا، جس میں اس کی گیس بھی ہوگی، اس میں اس کے کوئی لنچ کی باتیں بھی ہوں گی، کوئی اس کے ٹول ٹکٹس بھی ہوں گے۔ کچھ مرد ہوتے ہیں بہت کم کہ جن کو پہننے اٹھنے کا شوق ہے، وہ کپڑے بناتے ہوں گے، کچھ ہوں گے، لیکن غالب بات یہی ہے کہ مرد بےچارے سفید کپڑوں میں۔ اور عورت کو دیکھیے، وجود زن سے ہے، تصویر کائنات میں رونق ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کے رنگ گنیں، کتنے رنگ کے جوڑے ہیں آپ کے پاس، بلکہ آپ کہیں گے وہ آسان ہے کہ جن رنگوں کے نہیں ہیں، ان کی پرچیاں کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں کہ اب جاؤں گی تو یہ سوٹ لوں گی۔ اور اس کے برعکس عموماً مرد کیا پہنتے ہیں؟ اگر کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے تو وائٹ، اور اگر بےچارا کوئی جین پہنتا ہے تو وہ بلو، اور وہ بھی اب پھٹی ہوئی۔ مجھے اتنا رونا آتا ہے ایسے لوگوں کو پھٹی ہوئی پینٹوں میں دیکھ کے، جو باہر لڑکے لڑکیاں پھرتے ہیں، میں کہتی ہوں اتنے مفلس اور کلاش، کوئی اگر صدقہ قبول کرے تو ایسوں کو دو کہ ایک پینٹ تو سلامت لے لو۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایسی چیزیں، جس مرد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا تو کیا پھر عورت نہ کرے؟ یہاں آپ ایک چھوٹی سی چیز ذہن میں لکھ لیں، ایک کلیا لکھانا چاہوں گی، کلیا مین جیسے رول کہہ لیجئے، کہ جتنا کوئی درد سہے گا نا اتنا ہی پھل پائے گا۔ شادی کی صورت میں سارے کا سارا خرچ اسلام میں مرد کے ذمہ ہے، شادی کے سارے معاملات، عورت کے لیے گھر کا انتظام، عورت کے تحفظ کی چیزیں، اس کے لیے رہنے کا کمرہ، اس کے استعمال کی چیزیں، اس کا حق مہر، سب مرد کے ذمہ ہے۔ جب مرد اتنی ایفرٹ سہتا ہے، ساری زندگی اس کے نانفقے کا ذمہ لینا، یہ جو صدقہ حق مہر کی صورت میں ہم دیتے ہیں وہ مرد کی صداقت کی دلیل ہے، صدقہ کہتے ہیں حق مہر کو، اصل میں یہ مرد کے فیئر ہونے کی، مرد کے ٹروتھفل ہونے کی دلیل ہے کہ یہ مرد ویری سیریس کہ اس عورت کا ساری زندگی خرچہ اٹھائے گا۔ लोग इसको कहते हैं ये औरत की कीमत है, ये कीमत नहीं है, ये मर्द की तरफ से सदाकत है इस बात की। अब आप देखिए कि एक मर्द जब इतना कुछ करे तो अगर उसके बदले में क्या उसको अथॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए? औरत से मतलूब क्या है? एक ही बात, फस्सालेहात। आप इस लफ्ज पे गौर करके देखिए कि अल्लाह ताला ने कहा फस्सालेहात, सालेहा के लफ्ज से बात शुरू की, मोमिनानी का, निसानी का, इमरानी का। औरत से मतलूब क्या है? कि वो मर्द की बर्तरी को कबूल कर ले। ये एक जुमला लिख लें कि बेहतरीन औरत वो है जो अल्लाह के इस तख्लीकी मंसूबे को कबूल करते हुए मर्द की बर्तरी को तस्लीम कर ले। बस ये एक है वीक पॉइंट हर मर्द का, कि वो ये चाहता है कि उसकी बीवी उसकी इज्जत करे। आप ये काम कर लें, आप सालेहा बन जाएं, कानेता बन जाएं, आप उस मर्द की चीजों की हिफाजत करने वाली बन जाएं, आप यकीन करें वो मर्द भी आपका है, उसकी जेब भी आपकी है, उसके अच्छे जज्बात भी आपके हैं, वो आपकी केयर भी करेगा। लेकिन जो औरत सालेहा नहीं बनती, कानेता नहीं बनती और मर्द की इस बर्तरी को कबूल करने के बजाय खुद बराबर खड़ा होना चाहती है, तो फिर उसको वो बोझ भी उठाने पड़ते हैं जो कि असल में वो उठा नहीं सकती थी। अगर एक औरत अल्लाह ताला के इस फैसले को कबूल कर ले, क्या मुश्किल है? सिर्फ आप अगर इस चीज को समझ जाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो इंसान को अपनी जिंदगी में आसान होने लगती हैं। एक छोटी सी बात ऐड करवाऊंगी इसमें कि मर्द ने खर्च किया तो मर्द की कवामियत हो गई। अब वही औरत उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो उसके सारे मराहल सहती है, प्रेगनेंसी के सारे मुश्किलात वो उसके ऊपर सहती हैं, डिलीवरी के पेन सारे उसके हैं, बच्चे की पैदाइश उसकी है, बाद में दूध उसने पिलाना है। इस सूरत में क्या हुआ कि औरत ने तकलीफ सही, इस तकलीफ का बदला क्या मिला कि माँ का हक बाप की निस्बत 3 गुना है। सिर्फ औरत 1 साल बल्कि 9 महीने तक अगर मर्द को कवाम मान लेना और अपने से एक स्टेप ऊपर रख ले, तो फिर उसके बच्चे की माँ बनते ही वो उससे 3 सीढ़ियाँ ऊपर चली जाएगी। अल्लाह ने किस पे जुल्म किया? जब हम अल्लाह के फैसलों को मानते हैं हमारी जिंदगी खूबसूरत होने लगती है। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ औरतें नहीं मानती, हकीकत है, उनमें नश्यूज होता है, उनमें टेढ़पन होता है, ऐसी औरतों के दिलों में एक बड़ाई का ख्याल होता है। और आज का दौर तो है ही नश्यूज वाला दौर, आज की तरबियत तो है नश्यूज वाली, माजरत के साथ गर्दन अकड़ी हुई है। आज आप बच्ची को ये नहीं सिखा सकते कि देखो जरा दबके रहना, वो कहती क्यों, मैं क्यों रो, लो वो रह ले, मैं बर्तन दो वो क्यों ना धोए, मैं क्यों जाऊं घर छोड़ के वो क्यों ना छोड़े। ये बराबरी है और इसमें सच्ची बताऊं उनका कसूर नहीं है। पहले दौर में औरतें मर्द अलग होते थे, बच्चियां अलग होती थी, शादी 16-17 साल की उम्र में हो जाती थी, कभी किसी मर्द को करीब से देखा ही नहीं होता था। घरों में मर्दान खाने अलग होते थे, तालीमी इदारे अलग होते थे, इस बात पे दिल बैठा रहता था शादी के मौके पे कि एक मर्द इतना तन्हा हमारे साथ होगा, इतना कुर्ब होगा कि एक घर में एक कमरे में गैर मर्द साथ होगा, इसी से खौफ आता था। आज आप पहले दिन उसको प्रेप से लेके मॉन्टिसरी से लेके पूरे स्कूल के मराहल में आप लड़की लड़के को साथ बिठाते हैं, जब कोई फर्क ही नहीं रहा। अब जो चीज इतनी करीब हो कि आपको उससे डर आएगा, मतलब आप देखिए कि हम लोग कितना डरते हैं इलेक्ट्रिक वायर से, लेकिन जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो बिजली के तारों को भी पकड़ते हैं, क्यों, उनका हर वक्त का काम है। तो जब आग और पानी को हमने जमा किया तो धुआं तो उठेगा इसके अंदर, फिर वही खराबियां पैदा होती हैं जो आज के दौर में औरतों के अंदर हो रही हैं। और इस मौजू पे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सीरीज जो मेरा हाल है, मैंने अल्लाह झूठ ना बुलाए तो 20 से 25 बार मैंने इस टॉपिक पे दर्स किया है, मेरा घर मेरी जन्नत, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल वाइफ, 22 पॉइंट्स है उसमें कि एक अच्छी बीवी कैसे बना जा सकता है। किसी न किसी मौके पे इंशाल्लाह वेबसाइट पे आप लोग देख लेंगे, आप खुद अपने तौर पे सुनने के बहाने अपनी बच्चियों को जरूर सुनाएं, क्योंकि बाज दफा वो बात जो माँ के मुंह से सुन के अच्छी नहीं लगती वो किसी बाहर के मुंह से सुन के अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ फिर अल्लाह ताला ने ऐसी बिगड़ी हुई औरत को दुरुस्त करने की बात की। इस आयत पे भी औरतें बड़ी खफा होती हैं, देखो कहा है मारो उनको, वहजुरू होना फिल मदाजी वदरीबू होना, और आज सारा इल्जाम मर्दों का ये लगा दिया जाता है कि जो इस्लाम कहता है वो मारो। हालांकि आप देखिए ये मराहल है, अगर आप मेरे साथ चल सके अरबी में तो सिर्फ 1, 2, 3 करके लिख लीजिए तो ये स्टेप है। पहली चीज है फाइजू होना, इसमें नंबर 1 लगा ले। दूसरी चीज है औरत को नसीहत करो, और वाज कहते हैं नरम बात, पोलाइटली नरम बात करे। अगर बीवी में मिजाज है वो लाडली है, अकलौती है, माँ बाप ने लाड करके पाला, अब वो मर्द को कुछ समझती नहीं, नशूज है, और नशा सा कहते हैं चढ़ान को, ना कि हर वक्त सूजी हुई है और हर वक्त गुस्से में बैठी हुई है। अब मर्द देखता है कि इसके कोई तौर तरीके अच्छे नहीं है, ये मेरी इज्जत नहीं करती। तो पहला स्टेप क्या, फइजू हुन्ना, प्यार से बात करो, बेगम क्या बात है, क्या चाहिए, आप बताओ मैं कैसे आपके साथ मामला करूँ। हो सकता है मर्द के नरम लफ्ज जो उसके दिल को बदल दे, ये पहला स्टेप है। संभल जाए, वेल एंड गुड, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाए, ऐसा होना चाहिए। जैसे माँ बाप समझाते हैं ऐसे अक्लमंद शोहर भी बीवियों को समझा सकते हैं, और वो बच्चियां जो अपने माँ बाप की सुन लेती हैं वो शोहरों की भी सुन लेंगी। इसके बाद नहीं है तो फिर वह जुरू हन्ना फिल मदाजी, फिर ये दूसरा स्टेप है, फिर घर में रहते हुए बिस्तर अलग कर दो, क्योंकि बीवी के लिए ये बड़ी गहरी चोट होती है। एक वो है कि बीवी नखरे दिखाए कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, या मैं तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती। और बहुत सारी औरतों को ये भी बहुत एक मान होता है कि हम अपने मर्द का ये तकाजा नहीं पूरा कर सकते। और दूसरी सूरत है कि अच्छा मर्द ही कह दे तुम क्या, मैं तुम्हें मुंह नहीं लगाता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ये बात औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। और ये मामला घर में रहेगा। सही बुखारी की रिवायत है कि ला तहजुर इल्ला फिल बैत, मत छोड़ो मगर घर के अंदर। यानी वो मर्द जो रूठ के घर से बाहर चले जाते हैं या वो बीवियां रूठ के आती हैं, वो गैर शरई बात है। घर में रहते हुए लग करो, हो सकता है उसका शौर काम करेगा कि हुआ क्या, ये तो बात बिगड़ने लगी। संभल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर तीसरा इलाज। और याद रखिये ये घर बचाने के मरहले हैं। इन्हीं आयतों का जो हमने टॉपिक लिखा था, इसके साथ आप ये जो दूसरा हिस्सा जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका टॉपिक लिख सकते हैं कि टूटते हुए घर को बचाने के मरहले, या घर टूटने ना पाए ये लिख लें, आसान है। ये सारे स्टेप्स किसके हैं कि तलाक से अल्लाह बचाना चाहता है। एक तरीका क्या था कि बीवी नशूज है, यानी आप इस आयत को देखें, वल्लाती तखाफूना नशूजा होना, वो औरतें जिनके तुम नशूज से डरते हो, फतल्लिकू होना, तलाक दे दो, जान छोड़ो, तलाक 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 बोलो, कहानी खत्म। नहीं, अल्लाह नहीं चाहता घर टूटे, इसको नसीहत करो, इसको घर में छोड़ो। और वद्रिबू ना, हल्का सा मारो, कितना मारो, जैसे मिसवाक मारी जाती है, मुंह पे ना मारो, गाली ना दो। और अल्लाह का नबी जिनके हम रिवायतें कोट करते हैं, उन्होंने सारी जिंदगी किसी औरत को नहीं मारा। आज देखिए कि औरत के ऊपर कितना जुल्म है। आप, मैं वो फिगर्स नहीं देना चाहती आपको जो पूरे नामों के साथ मौजूद हैं कि किस मुल्क में कितनी औरतें कितना पिटती हैं, और किस मर्द ने, मशहूर लोग, फेमस औरतें पिटती हैं और फेमस मर्द अपनी औरतों को पिटते हैं। क्या उन्होंने कुरान से पहले सूरह निसा खोली, फिर ये आयत पढ़ी और हुक्म सुना कि अल्लाह का कुरान कह रहा है वद्रिबू हुन्ना, फिर मारने लगे? आज हम सारा इल्ज़ाम इस पे लगाते हैं। हम अपने घरों में देख लें कितनी औरतों को मार पड़ती है, हमारी खालाओं को, हमारी फुफियों को, हमारी मामों को। कोई एक रेयर केस होगा जो बहुत ही ज्यादा जहालत वाला केस होगा, कभी मार नहीं पड़ी, लेकिन हम गैरों की बातें बोलने लगते हैं और नतीजा क्या होता है कि फिर शर्मिंदा फिरते हैं। कहा नहीं, हल्की सी मार लगाओ, फिर अगर मान जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। और बाकी रह गई बात कि अब भी बात ना बनी, इख्तलाफ इतने बढ़ गए कि दोनों तरफ दिमाग खराब हुए हुए हैं, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई। अब क्या होता है कि जब दो लोग आपस में इतने ज्यादा उलझ चुके हैं कि उनकी अकल ही माफ हो गई, तो कहा आप तीसरे को बुला लो, अब बाहर का मामला, फसलहू बैनहुम, कोई तीसरा शख्स आएगा जो न्यूट्रल होगा, वो दोनों की सुनेगा और उस मामले को बेहतरीन तरीके से करने वाला बना देगा। तो बात यह है कि आपस के मामलात के अंदर इंसान अगर अल्लाह ताला की रहनुमाई से फायदा उठाए तो घरों में भी इंशाल्लाह सुकून और चैन होगा और बाहर भी।